श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की सुत गोस्वामी ने कहा, जिस समय द्वापर युग का नेत्र सुत गोस्वामी ने कहा जिस समय द्वापर युग का त्रेता युग से अतिव्यापन हो रहा था, तो वसु की पुत्री सत्यवती के गर्भ से पराशर द्वारा महान ऋषि ने जन्म लिया। तात्पर्य, सत्य द्वापर त्रेता तथा कली चारों युग अर्थात्म का एक काल क्रम होता है, लेकिन कभी कभी इसमें अतिव्यापन हो जाता है। वैवस्वत मनु के राज्य काल में चतुर्युगों के 28वें चक्र का अतिव्यापन हुआ था और तृतीय युग द्वितीय युग के पहले ही पड़ गया था। ऐसे युग में भगवान श्री कृष्ण भी अवतरित होते हैं और इसीलिए कुछ विशेष परिवर्तन हुआ था। महर्षि की माता सत्यवती वसु मधुवारे की पुत्री थी और उसके पिता महान मुनि पराशर थे। व्यासदेव के जन्म का यही इतिहास है। प्रत्येक युग तीन कालों में विभाजित होता है और हर काल संध्या कहलाता है। व्यासदेव उस युग की तृतीय संध्या में प्रकट हुए थे। ओम अज्ञान तिमिरानन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप ग्रामीयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं साद्वैतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। सप्तकांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी कृशुभानुसुधे देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गिरिधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। यहाँ पर आज के इन श्लोकों में जहाँ पर सुत गोस्वामी नैमिषारण्य ऋषियों के प्रश्नों का उत्तर आरंभ करते हैं, तो आरंभ करते हैं वेदव्यास जी के जन्म इतिहास के ऊपर चर्चा करते हुए। तो वहां से आरंभ करते हैं और कहते हैं कि किस प्रकार वेदव्यास जी की जो माता जो थी सत्यवती और उसके पिता का नाम पराशर, उनके गर्भ से सत्यवती माता के गर्भ से वेदव्यास जी का प्राकट्य हुआ। तो वेदव्यास जी ने जैसे ही जन्म लिया उन्होंने अपनी माँ को छोड़कर निकल पड़े। अब जब जा रहे थे तब सत्यवती बड़ी निराश हो गई कि तुमने जन्म लिए जा रहे हो। तब उन्होंने कहा कि माता, जब भी तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता होगी, कोई भी संकट होगा तो मुझे याद करना, मैं तुम्हें मदद करने के लिए तुरंत आ जाऊंगा। और ऐसे कहकर वेदव्यासी वहां से निकल पड़े। अब इनका जो प्राकट्य जो हुआ है, जहां पर वर्णन आता है इस प्रकार कि पराशर मुनि जब नौका में जब उनके सत्यवती के जो पिता जो थे उनका ये पेशा था कि लोगों को एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान पर छोड़ने का, ये उनका पेशा था। तो वैसे हुआ यूं कि एक समय की बात थी कि जब सत्यवती माता जब नौका समय जब विचरण कर रही थी उसी समय पराशर मुनि एकाएक उनके समक्ष प्रकट हुए। और प्रकट होते ही उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम्हारे गर्भ से एक संतान को प्रकट कराऊं। तब सत्यवती माता तो बड़ी चिंता में पड़ गई, वो कहने लगी ये तो मेरे पिता की आज्ञा के बगैर मैं तो ये कदम नहीं उठा सकती। तो बोले वो कहने लगी मैं कुंवारी हूं ये कैसे हो सकता है। तो पराशर मुनि ने कहा कि तुम उसकी चिंता मत करो, तुम्हारे जो कुंवारीपन का जो अवस्था है उसमें थोड़ा भी कलंक नहीं आएगा, वो यथा रूप में वैसा ही रहेगा। और तुम्हारे गर्भ से जो संतान जन्म लेगा वो भविष्य में आने वाले जन लोगों के कल्याण के लिए वो अपने जीवन को समर्पण करेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम इस प्रस्ताव को स्वीकार लो, और मैं तुम्हें ये भी आशीर्वाद दूंगा कि तुम्हारे शरीर से जो गंध आ रहा है वो तो गंध भी तुम्हें मिट कर एक अच्छा सुगंध बरसेगा और फूल का सुगंध आएगा। और वैसे पराशर मुनि ने जब इस प्रकार कहा तो सत्यवती उनकी बात से सहमत हुई। तो सत्यवती कभी कभी लोगों के मन में यह विचार आता है कि जो ठीक से इस चर्चा को नहीं समझते हैं तो वो लोग इस पर निंदा पूर्वक अलग अलग तर्क व्यक्त करते हैं कि देखिए जिन्होंने इस वेद साहित्य की जो रचना की है उनके ही इतिहास देखिए कि किस प्रकार है, जो कि एक पराय पुरुष के द्वारा उनका गमन होने के कारण यहाँ पर व्यास जी का जन्म हुआ। तो लोग ऐसे तर्क रखते हैं, लेकिन वास्तविकता सत्य यह समझना चाहिए कि सत्यवती भी कोई साधारण स्त्री नहीं थी, ना ही पराशर मुनि कोई साधारण व्यक्ति था, ये दोनों भी बड़े महान ऋषि हुए। तो बताया जाता है कि सत्यवती जो कि जिनके शरीर से जो मच्छी का जो गंध आ रहा था उसका ऐसे कारण था क्योंकि एक समय की बात थी कि जब परीक्षी ऋषि जिन्होंने स्वर्ग के अप्सराओं को देखा तब उनकी ऊर्जा जब स्खलित हुई तो उसी ऊर्जा को एक मच्छी ने ग्रहण किया, और उस मच्छी ने जैसे ही उस ऊर्जा को ग्रहण किया तो उनके गर्भ में एक कन्या जन्म ली, और वही जो कन्या जो कि सत्यवती के नाम पर जानी जाती थी। तब वो एक मछुआरे को वही कन्या प्राप्त हुआ, और क्योंकि उन्होंने मच्छी के गर्भ से जन्म लिया इसलिए उनके शरीर में मच्छी का गंध आता था, इसलिए उनका एक दूसरा नाम भी है मत्स्य गंध। तो वैसे सत्यवती जो कि एक बड़े तपस्वी ऋषि के पुत्री के रूप में जानी जाती है, और पराशर मुनि भी बड़े तपस्वी, तो उनके द्वारा वो वास्तविक वेद व्यास जी के माता पिता पराशर मुनि और सत्यवती जाने जाते हैं। तो यहां पर वेद व्यास जी ने जब जन्म लिया तो वो जन्म कोई साधारण जन्म नहीं था, ये भी जो जन लोग जैसे जिस प्रकार व्यक्ति जन्म लेता है वैसा जन्म नहीं था, इस जन्म को कहते हैं कारण जन्म। तो दो प्रकार के जन्म होते हैं, एक होता है कारण जन्म दूसरा होता है कर्म जन्म। तो वो जो कारण जन्म जो होता है वो किसी हेतु से जन्म लेते हैं, वो किसी कार्यों को संपन्न करने के लिए आते हैं उसे कहते हैं कारण जन्म। इसलिए भगवान भगवद गीता के चौथे अध्याय के छठे श्लोक में बताते हैं अजो अपि सन्नप्येतात्मा भूतानाम ईश्वरो अपि सन्, प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाया, भगवान कहते हैं कि मैं स्वयं प्रकट होता हूं, स्वयं स्वाम अधिष्ठाया। तो भगवान को कोई जन्म देते नहीं है, भगवान अपनी इच्छा से आते। लेकिन हमारी ऐसी स्थिति है कि जब बद्ध जीव जब जन्म लेता है तो उसको कहते हैं कर्म जन्म, उसे जबरदस्ती जन्म दिया जाता है बाय फोर्स। तो भगवान और भगवान के भक्त इसी प्रकार उनके जन्म के विषय में ऐसे चर्चा की जाती है कि वो कर्म जन्म है, कारण जन्म है। तो कारण जन्म, कर्म जन्म में क्या होता है कि व्यक्ति जब जन्म लेता है तो उसे उस माँ के गर्भ में एक षट वायु करके एक वायु होता है, जो वायु उस माता के गर्भ के अंदर रहता है, वो वायु की जो रफ्तार जो होती है, बताया जाता है कि 300 माइल के रफ्तार में, एक घंटे में 300 माइल की रफ्तार में वायु भागती है, और वही वायु उस गर्भ के अंदर बैठा हुआ शिशु को जोर से धकेलता है, और जिससे धकेलने से वो वायु, उस वायु के जोर से धकेलने से वो बालक रोता हुआ जन्म लेता है। तो वैसे ये जो बालक जिसके जन्म का जबरदस्ती जन्म देते हैं, क्योंकि उसके कर्म को भुगतना है, इसलिए कर्म जन्म। वैसे एक श्री संप्रदाय में एक आचार्य हुए जिसका नाम पड़ा षटवायु, नहीं उनका नाम पड़ा षटकोप। तो ये षटकोप एक बड़े अडवार हुए श्री संप्रदाय के, षटकोप। तो इनका ये जब माँ के जब गर्भ में थे तब उस समय ऐसे हुआ कि यही षटवायु उस गर्भ के अंदर जो बालक था, और ये कोई साधारण बालक नहीं था, नारायण का बड़ा भक्त था, तो उस विष्णु के भक्त को यहाँ पर ये आया था षटवायु उसे धकेलने के लिए। तब उस समय उसी गर्भ में ही उस बालक ने उन्हें उंगली दिखाकर कहा बाजू से जाओ, मुझे छूना मत। अब वो वायु कांप गया और वो घबरा कर बाजू से निकल गया, और केवल गर्भ में ही उन्होंने वायु पर कूप क्रोध किया, इसलिए उनका नाम पड़ा षट कोप, और वैसे बड़े अलवार हुए। तो भगवान के भक्त और भगवान जब आते हैं तो उन्हें कोई जबरदस्ती जन्म नहीं देते हैं, वो अपनी इच्छा से आते हैं। वैसे ही वेद व्यास जी यहाँ पर जो जन्म लिए हैं, वेद व्यास जी के प्राकट्य माने जाते हैं, क्योंकि उनका कारण जन्म है। और वेद व्यास जी का जो कि बताया जाता है कि वेद व्यास जी स्वयं सत्यावेश अवतार के रूप में माने जाते हैं, जो कि भगवान के 24 अवतार में 17वें अवतार में वेद व्यास जी आते हैं। और वैसे वेद व्यास जी वो 27वें अवतार के रूप में जाने जाते हैं। तो भगवान के ऐसे 6 अवतार हैं, पुरुषावतार। पुरुषावतार यानी कि जब भगवान इस सृष्टि से जब लेन देन रखते हैं तो उसे कहते हैं पुरुषावतार। जैसे भगवान 3 विष्णु के रूप में अपने आप को विस्तार करते हैं, कारणोदक्षा विष्णु, गर्भोदक्षा विष्णु और शिरोदक्षा विष्णु। तो ये जो 3 विष्णु जो कि इस भौतिक संसार को चलाते हैं, या इस भौतिक संसार को सृष्टि रचना करने के लिए इनका जब जन्म हुआ, या इन्होंने जब अपने आप को विस्तार किए, तो इस अवतार को माना जाता है कि पुरुषावतार। अब उसके बाद गुणावतार, जो कि इस सृष्टि को रचना करने के बाद इसी सृष्टि में 3 गुणों को धारण करने के लिए, 3 गुणों को नियंत्रण करने के लिए भगवान ने अपने आप को 3 रूप में प्रकट किया। तो नारायण स्वयं, जब तमोगुण को अगर नियंत्रण करना है तो उन्होंने महादेव के रूप में प्रकट हुए, जो कि महादेव तमोगुण के अधिष्ठाता देवता है। और रजोगुण को अगर नियंत्रण करना था तो उन्होंने ब्रह्मा जी के रूप में प्रकट हुए। और वैसे ही स्वयं भगवान ने सत्वगुण के रूप में नियंत्रण करने के लिए अपने आप को विस्तार किए। तो वैसे तीन विष्णु हैं, वैसे कारण रक्षा विष्णु, गर्भ रक्षा विष्णु, शिरो रक्षा विष्णु, और फिर उनसे ये तीन अवतार हुए जिनको कहते हैं गुणा अवतार, ब्रह्मा विष्णु महेश। अब जब इस भौतिक संसार को चलाने के लिए जब कुछ व्यवस्था ठीक नहीं होता, तब वही भगवान मन्वंतर अवतार के रूप में प्रकट होते हैं। जब कुछ व्यवस्था में गड़बड़ होता है तब तब भगवान मन्वंतर के रूप में प्रकट होते हैं। तो वो हो गए तीसरा। अब इस भौतिक जगत में जब कुछ लीला करना है तो भगवान लीला अवतार के रूप में प्रकट होते हैं, बद्ध जीवों को आकर्षित कर भगवत धाम लेकर जाते हैं। और फिर इसी युग में जब धर्म जब ग्लानि होती है तो धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान युग अवतार के रूप में प्रकट होते हैं, जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु जिन्होंने हरि नाम का धर्म का प्रचार किया। तो वो हो गया पांचवा अवतार युग अवतार। और छठा जो है सत्यावेश अवतार, जो कि वेद व्यास थी। ऐसे इसलिए प्रभुपाद जी को भी सत्यावेश अवतार के रूप में माने जाते हैं, क्योंकि सत्यावेश अवतार का अर्थ क्या है कि एक साधारण जीव के अंदर भगवान अपनी अद्भुत शक्ति प्रदान कर देते हैं, और उनसे ही भगवान को कुछ अपना कुछ उद्देश्य पूर्ण करना होता है तो उनके द्वारा करते हैं। जैसे पृथु महाराज, जैसे परशुराम। परशुराम ने पूरे विश्व में 21 बार क्षत्रियों का संहार कर उन्होंने धर्म की स्थापना की। तो वैसे उन्होंने अद्भुत कार्य किए, वैसे ही श्रील प्रभुपाद ने भी अपने जीवन, अगर उनके जीवन चरित्र अगर पढ़ेंगे तो पता लगता है कि कैसे उन्होंने अद्भुत कार्य कर दिखाए पूरे विश्व भर में, जो कि जिन्होंने केवल 12 साल के अंदर उन्होंने पूरे विश्व भर में हरे कृष्ण आंदोलन के पूरे विश्व भर में फैला दिया। और आज वही हरे कृष्ण आंदोलन को प्रभुपाद ने ऐसा उन्होंने डंगा बजाया कि आज भी इस हरे कृष्ण आंदोलन का चारों दिशाओं में इसी की ध्वनि गूंज रही है, और वो भी तब 70 साल की आयु में, और केवल 40 रुपये लेकर विदेश गए थे। कितनी अद्भुत आश्चर्यजनक वाली बात है, हम तो 40 रुपये लेकर मीरा रोड से वापी भी नहीं आ सकते, वो भी 100 बार सोचेंगे, होगा ही नहीं। लेकिन यहां से श्रील प्रभुपाद विदेश गए, वो भी ऐसे देश में जहां पर उनका कुछ पहचान परिचय, कुछ बड़े दूर से कुछ पहचान था, वो भी एक जन से, और उनकी तलाश में गए थे, वो भी गारंटी नहीं था। लेकिन प्रभुपाद के हृदय में भगवान के प्रति इतनी आस्था थी कि उन्होंने एक कर दिखाया। तो ये इसलिए श्री प्रभुपाद को शक्तियावेश अवतार के रूप में संबोधित किया जाता है। तो वैसे ही यहाँ पर वेदव्यास जी जो स्वयं शक्तियावेश अवतार है, और यहाँ पर बताया गया है समनु प्राप्ते का अर्थ है आविर्भाव हुए। आविर्भाव यानी कि प्रकट हुए, तो वेदव्यास जी प्रकट हुए। और हमारा किस प्रकार जन्म होता है, हमें जन्म दिया जाता है। इसलिए कपिल मुनि एक साधारण जीव के जन्म के विषय में बताते हैं कि हमारे जन्म में और भगवान के भक्तों के जन्म में जमीन आसमान का भेद है। तो वर्णन करते हुए बताते हैं कि एक साधारण जीव का जन्म कैसे होता है। तो कपिल मुनि अपनी माता देवहूति को समझाते हुए कहते हैं, श्री भगवान उवाच कर्मणा दैव नेत्रेण जन्तुर्देह उपपद्यते स्त्रिया प्रविष्ट उद्रवम पुंसा रात्रे कनाश्रया। तो कहते हैं कि एक जीव इस धरातल में कैसे आते हैं, तो कर्मणा दैव नेत्रेणा, तो उनका अपने कर्म को भुगतने के लिए दैव नेत्रेणा, जो कि जिसे देवताओं के, जो कि प्रकृति के नियमों के द्वारा जो पूरी तरह नियंत्रण करते हुए वो कर्म के चक्र को काटते हुए वो दैव नेत्रेणा उसी के चुंगल में फंसते हुए वो जंतुर, वही जंतुर देह उपपद्यते, वो देह को धारण करता है अपने कर्म को काटने के लिए। तो यहां पर बताया जाता है, इसलिए प्रभुपाद भगवत गीता के एकादा तात्पर्य में वर्णन करते हैं कि जंतु इस धरातल में कैसे आते हैं। एक साधारण जीव, तो वो जीव आत्मा इस धरातल में बरसात के बूंद से आते हैं, और ये जो बरसात का बूंद जो कि जब भूमि पर जब गिरता है तो उसी पौधे पौधा उसी बूंद को जब पीता है तो वो पौधा के अंदर वो जीव आत्मा रहता है, और वही जीव आत्मा उस अन्न के अंदर प्रवेश करता है, और उसी अन्न को जब एक पुरुष जब खाता है तब वो वही पुरुष के शरीर में ऊर्जा जन्म लेती है, और जिससे वही ऊर्जा जब माँ के गर्भ में जब प्रवेश करती है तब माँ के गर्भ में कालम त्व एक रात्रे न पंच रात्रे न भुदभुदम, तो वही बालक माँ के गर्भ में जैसे ही वो प्रवेश करता है तो बताया गया है पंच रात्रे न भुदभुदम, पांच दिन के बाद वही एक गोला बन जाता है भुदभुदम, जो बबल जिसको बोलते हैं भुदभुदम, एक जो आप पानी में देखे रहेंगे बुलबुल, क्या बुलबुला, हाँ तो बुलबुला बन जाता है। और दशाहेना तू करा घंतु, और फिर 10 दिन के बाद उनके हाथ और पैर निकलते हैं। मासेना तू शिरोध्वसाभ्याम, 1 महीने के बाद उसका सर का जो ढांचा है वो निकलता है। और नख लोमासित चरामनी, और फिर बताया गया 2 महीने में उसके नाख उंगलियां और फिर नाखून सब जन्म लेते हैं या उसमें निकलते हैं। चतुर लिंग चित्रोद्भव पृथ्वी, और 3रे महीने में पता लगता है कि वो स्त्री एक पुरुष है। और चतुर्भी धास्तव सप्त पंचाभी शुत त्रि उद्भव, और 4थे महीने में उनके शरीर के जो त्वचाएं हैं वो त्वचा है जो कि 7 प्रकार का लेयर होता है, जो 7 प्रकार की त्वचा है जो शरीर में होती है, तो वो जन्म लेती है। और फिर बताया गया है कि श्लोक प्रभुपाद इसी के तात्पर्य में बताते हैं, इसी 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 श्लोकों के एकादश तात्पर्य में वर्णन करते हुए बताते हैं कि जब बालक दाहिने तरफ हिलता है तब ये समझना चाहिए कि लड़का होने वाला है, और वही बालक जब बाएं तरफ हिलता है तो ये समझना चाहिए कि लड़की होने वाली है। हाँ, वही गर्भ के अंदर। तो यानी कि लोग सोनोग्राफी वगैरह करते हैं उसका भी जरूरत नहीं है यहाँ पर पूरा व्यवस्थित। तो ऐसे माता भी हैं गांव में जो केवल गर्भ को ध्यान से देखकर बता देती है कि लड़का है कि लड़की है, तो वो कला वो सीख लेते उन लोग। इतने अनुभूति उन लोग प्राप्त करते अपने जीवन में। तो वैसे ये तो शास्त्र में यहाँ पर पहले से ही बताया गया है कि इस प्रकार वो बालक गर्भ में जन्म लेता है। तो बहुत से वैज्ञानिक लोग जो कि सोचते हैं कि गर्भ के अंदर शिशु आया तब तक उसके अंदर कोई प्राण नहीं रहता या कोई उसका दिमाग नहीं रहता है तो उसे मार भी सकते, इसलिए लोग एबॉर्शन करते हैं, उस शिशु को मार देते हैं। लेकिन जबकि ये सबसे बड़ा घातक है, यहां तक कि हम देखेंगे कि कृष्ण लीला में जहां पर कंस ने भी ऐसा अत्याचार नहीं किया, कंस ने भी कम से कम बालकों को जन्म लेने के लिए थोड़ा समय दिया। तो आज के तारीख में जो लोग एबॉर्शन करते हैं तो वो तो कंस से भी गए गुजरे हैं, अगर उसको कंस भी बोलेंगे तो स्तुति है उसके लिए। तो ऐसे आज के लोगों की ऐसी चेतना हो गई है कि लोग सोचते गर्भ के अंदर बच्चा को प्राणी नहीं है, लेकिन जबकि वर्णन है, और वही बालक उसी गर्भ के अंदर ऐसे छटपटाता रहता है। तो इस प्रकार का जन्म जिसे कहते जंतु जन्म, जो कि गर्भ के अंदर बैठ कर वो भगवान से प्रार्थना करता है कि मुझे इस नरकीय स्थिति से बाहर निकालो, तो जैसे जन्म लेता है तो रो देता है। तो किसी कवि ने इसके ऊपर अच्छा अपना टिप्पणी लिखते हुए कहा कि देखो बालक ने जन्म लिया तो रोता क्यों है। तो कहते हैं कि गर्भ के अंदर वही बालक भगवान से प्रार्थना करता है कि मुझे माया के जंजाल में फिर नहीं फंसना, फिर नहीं फंसना, और वो रोता रहता है गर्भ के अंदर। तो जैसे उसका जन्म लेता तो जोर से रोता हो मैं फिर आ गया इस माया के चक्कर में, मैं फिर फंस गया, तो वो तो रोता है, लेकिन उसके सारे संबंधी सब पार्टियां बनाते हैं, हमारे बिरादरी में और एक फंस गया जाए। तो ये भौतिक संसार की शुरुआत ही ऐसी है। भौतिक संसार की शुरुआत क्या है कि एक व्यक्ति जब रोएगा तब दूसरा व्यक्ति हंसेगा। भौतिक जगत का सुख क्या है, जब तक दूसरे को रुलाएगा नहीं तब तक उसे सुख नहीं मिलेगा। शुरुआत ही है, आरंभ इसी से होता है। अभी आप देखिए एक साधारण उदाहरण देखिए, अगर कोई लेदर शू बेचता है तो वो उसके लिए धंधा तो अच्छा चलेगा, लेकिन जब बरसात का मौसम आएगा उसके लिए दुख की पीड़ा है, दुखी अवस्था है, वो तो दुखी हो जाएगा। लेकिन जितने भी छापे वाले हैं वो सब मौज करेंगे कि हाँ हमारा धंधा चलेगा अभी जोर में, उसके लिए आनंद की बात है। एक के लिए सुख है तो वही अवस्था दूसरे के लिए दुख है। जैसे हमारे शरीर में कोई बीमारी ना हो ये तो हमारे लिए आनंद की बात है या सुख की बात है, लेकिन किसके लिए दुख की बात है? लेकिन डॉक्टर के लिए दुख की बात है क्योंकि अभी तक कोई धंधा नहीं हो रहा है, कौन वो केवल प्रतीक्षा करेगा कि कौन बीमार होगा। तो वैसे ही हर अवस्था देखिए सभी दिशाओं में, कोई भी आप किस पन्ने खोलेंगे उसमें आपको एक व्यक्ति रोता हुआ दिखेगा ही, दूसरे कारण दूसरे दूसरा व्यक्ति उससे कष्ट भोगेगा ही। इसलिए ये भौतिक जगत में कहीं पर भी वास्तविक सुख नहीं है, जो केवल एक सुख का आभास है। तो वैसे संसार में ये जीव आत्मा बलपूर्वक उसे जन्म दिया जाता है। तो इस तरह वेद व्यास जी का ऐसा जन्म नहीं था। वेद व्यास जी के जन्म को इसलिए कहा गया आविर्भाव, प्रकट। प्रकट यानी कि किसको बोलते, जैसे कि सूरज प्रकट होता है और जब ढल जाता है तो अप्रकट हो गया। तो प्रकट होना अप्रकट होना, जब अप्रकट होता है तो हम ये नहीं कहें दावा करेंगे कि अब सूरज नहीं है, सूरज है किसी और स्थान पर है। इसी प्रकार वेद व्यास जी प्रकट हुए तो हालांकि हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप में प्रकट नहीं है मगर तत्पर भी प्रकट है, अदृश्य रूप में जिसको व्यक्ति देख नहीं सकते हैं। तो ये कोई दावा नहीं लगा सकते कि वेद व्यास जी अब नहीं है या मर गए वगैरह, ये व्यक्ति दावा नहीं कर सकता। अब भी वेद व्यास जी का प्राकट्य माना जाता है। वैसे ही वेद व्यास जी यहां पर सत्यवती माता के गर्भ से उनका प्राकट्य हुआ और इस तरह द्वापर युग के संध्या समय पर उनका प्राकट्य हुआ, यानी कलयुग का आरंभ ही होने वाला था उस समय वेदव्यास प्रकट हुए। अरे प्रश्न कोई जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की चार युग ना। हरे हाँ ओ वनमाली गोपाल प्रभु ने बोला था, वो वनमाली गोपाल प्रभु उसने क्या बोला था कि अभी ये द्वापर युग बाद में क्यों आया, त्रेता युग पहले क्यों आया, क्योंकि अहल्या को शाप लगा था। हाँ तो मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं था, मैं इसलिए उसके बैटर में गया नहीं। एक बात बात हाँ एक दिन में होता है, हाँ ऐसा कुछ है ना, वो
बारह भागों को तीन भागों में प्रथम संख्या।